up y'all money, you know. When I was living down here in Chiruri and Fasina, then the city of Yamanina. May he have the Kala and Lila. Only of the Lila of Kala Adila. On a shadow and Ila, Ila, Wahda. Wahda, Ula, Shadigala. On a shadow and Sayyidana, Mariana. وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو شکر بھائیو ہمارا ہمارے سوا تمام مخلوقات کا اور اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے, اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی مشیر نہیں, کوئی مثل نہیں. تنہا اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اسی نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے, اپنے امر کن سے پیدا کیا ہے, اور اسی اور وہی ایک اللہ ہے جو ایک دن آئے گا اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے ختم کر دے گا. آسمان, زمین, چاند, سورج, تارے, ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ختم کرے گا. قرآن پاک اللہ نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ نے قرآن پاک کے پڑھنے کی توفیق دے اور علماء کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. اللہ نے اس سورج کو اتنی تیز روشنی والا بنایا ہے, وہی اللہ ایک دن وہ لائے گا کہ اس کی روشنی کو خدا ختم کر دے گا, ختم کر دے گا. تو اس میں سوا بدل بجائے روشنی کے اس میں اندھیرا آ جائے گا. وہی اللہ ستاروں کو جو آج آسمان پر نظر آ رہے ہیں اسے وہاں پہ توڑ کر نیچے پھینک دے گا. سمندروں میں آگ لگا دے گا. وہی جب بہار اور سوچے رہو کہ جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا. یہی پہاڑ جہاز بہت بدلے دکھ رہے ہیں, کل پہ اس کو اللہ ہلکا کر کے یہ روئی کے گالوں کے سر اڑیں گے. بڑی قدرت والا ہے اس اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا ہے. اور آزمائش کیا ہے؟ اس پوری کائنات کے نظام میں انسان اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ اور دین کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یا پھر اپنے آنکھوں کے دھوکے میں پھنس کر یا اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے آپ رسوڑ کر دنیا کے اندھے انسانوں کے بیچ کرتا ہے. یہ ہر انسان کی آزمائش ہے. دنیا کے تمام اسباب کا خالق بھی ایک اللہ ہے اور ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی ایک اللہ ہی نے دیا ہے. اور اسی اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے اس بات کی خبر دی ہے کہ تمہاری اسباب کی دنیا میں تمہارا رہنا تمہاری آزمائش کے لیے ہے. اللہ تمہارا خالق ہے, وہ مالک ہے. اب کیا بھی آپ اس کو لگانے کی کوشش میں ہیں؟ وہ بھائی ابھی تم کو سوچی ہے, اتنے دنوں سے تمہیں نظر آ رہی تھی, اٹھا کے پھینکی تھی اس کو تمہیں, اب بیان ہو رہے ہیں. اب چھوڑو, میرے پاس گھڑی ہے دیکھنے کے لیے. میں نے اسی تمہیں خبردار کیا کہ تو بےچارا یہ خبریں بیان کرتا رہا اور دیکھتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے, اور پھر باہر جا کے تم آدھے گلو گیا اور سب نے اتنا لمبا بیان کر دیا. ہے تو کل ہوا اتنے وقت میں نہیں کرتے. جب آپ لوگ میں دیکھتے ہو سب خراب ہو گیا, اسے خیال ہوتا تھا سیل ختم ہو گیا, سیل بدلنے کتنی دیر لگے. مسجد میں آؤ تو مسجد میں دیکھو تو اگر کوئی کوڑا کر کر پاؤ تو اٹھا کر باہر جائیں, مولوی صاحب کرے جائیں گے مت پسند. مسجد تو سب کی ہے, مسجد کی صفائی کرنا اللہ کے یہاں اتنا زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ جو لوگ مسجد کی صفائی کریں گے یہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی حوروں کے بدلے میں ادا کرے گا. عمر فرماتے ہیں اگر مجھے خلیفہ نہ بنایا ہوتا نا میں مسجد کی صفائی کرتا, اور اللہ نے کہتا آج ہماری نگاہ میں نہیں ہے تو وہاں تو باغی ہے. ابھی سوچتے نہیں کہ مسجد کی معنی کیا ہے کہ اللہ کا یہ ایسی ہے خبر, اللہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کو اذان کے ذریعے خبردار میں بھی بلاتا ہے کہ آؤ مسجد نہ ہو جلدی, اللہ کا تمہیں بلاوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی میرا عزیز ہو, یہ پوری کائنات کو اللہ نے ہماری امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہمارا امتحان یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان کس شعبے میں ہو, چاہے وزیر ہو, چاہے بادشاہ ہو, چاہے ایماندار ہو, غریب ہو, مزدور ہو, کھیتی کرنے والا ہو, تاجر ہو یا کچھ بھی ہو, ان سب کا ایک ہی امتحان ہے کہ یہ اپنے اپنے شعبے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں, یعنی اس شعبے میں چلنے کا جو طریقہ لے کر آئے ہیں, آدمی اس طریقے کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یا پھر اپنی منمانی اپنی منچاہی طریقے پر زندگی گزارتا ہے, یہ ہر انسان کا امتحان ہے اپنے اپنی لائنوں میں جو جس لائن میں محنت کر رہا ہے, اور اسی پر اس کی زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ہے. مال کے ہونے سے زندگی بن گئی تو سب مالداروں کی بن جاتی ہے, لیکن سب کہتے دعا کرو ہمارے پاس تو ماتا راج ایک کہتے ہیں, اور بہت سے کچھ ایسے بھی آتے ہیں خصوصی دعا میں یاد رکھنا, وہ خصوصی میں تجھے یاد رکھیں گے تو پھر میرے بھی نہیں کریں گے ہم. اسی دعا کا تو مجھے کہہ رہا ہے تجھے بھی اتنا سارا دعا کرنے کا حکم دیا ہے, اگر تو حکم عام ہے پرانے پاک میں وہ دو نہیں ہے سجیب لگوں, ये मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये गरीब को भी है, मालदार को है, बादशाह को है, वजीर को, मौलवी साहब को, गैर मौलवी साहब को भी है, उसके मांगो मैं तुमको दूंगा, आधा दे रहा है वो, लेकिन मांगना सीखते नहीं अल्लाह से। और फिर अल्लाह से ताल्लुक बिगाड़ के कहता है कि आप मुझे मेरी क्या दुआ कबूल हो, सुना जो तेरी दुआ को, अल्लाह तेरी दुआ को तेरे मुंह पर मारेगा। कमी है हमारी फराज अदा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता, परे धोखा मस्कारी नहीं गुजारता, हमारी मखलूक को सताता है, और फिर हमारे पास आए चल नहीं करते। अल्लाह तआला शान होने अपने बंदों को अपने से मांगने का तरीका बताया, या करना हो तो भैया का नस्ता ही, अल्लाह हम तेरी ही मानेंगे, किसकी मानेंगे, हम तेरी ही मानेंगे, तेरी ही दात करेंगे, तेरी ही इबादत करेंगे, और अल्लाह तुझे से मांगेंगे। तो दुआ, दुआ के लिए सबसे पहले अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करो। अब तक जो गफलत की जिंदगी गुजारी, माफी मांगो अल्लाह से, माफ कर देगा वो, और अपनी जिंदगी की लाइन सही करो कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे जैसे जिंदगी गुजारने को बताया है, मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी है। जिंदगी पर आ जाओगे फिर अल्लाह से कहोगे अल्लाह ये कर दे, अल्लाह का तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। हाँ, अल्लाह को तो मुसलमान की दुआ बहुत बहुत ही महबूब है, वो अपने बंदों की दुआओं का इंतजार करता रहता है, मेरे बंदे मुझसे मांगे और मैं दूं। हाँ, मोमिन की दुआ से बेहतर और काबिल एहतराम और कोई चीज नहीं ज्यादा। यहां तक आता है किताबों में कि जो बंदा दुआ के लिए वक्त मुतय कर देता है, उस वक्त दुआ मांगने के लिए नहीं दुआ मांगता, बल्कि इंतजार में रहता है कि मेरा बंदा भी दुआ करेगा और मैं उसको दूंगा। अबलियत की मेहनत थी कि दुआ वाले बन जाओ, सब बख्तियार अपने तो दुकान वाले कार हटाने वाले ने पता नहीं नेता गिरी पता नहीं क्या क्या करता है, और फिर कह रहे हैं सबसे मांगना ठीक था, अल्लाह से मांगना ठीक था। अबलियत में क्या है कि किसी के हाथ में कुछ है नहीं, न किसी बादशाह के, न वजीर के, न प्रेसिडेंट के, न किसी दुनियादार के, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह का बंदा बन जा और अल्लाह से लेने वाला बन जा, तेरे मतदार हो जाएंगे। आसान है, एक के मतदार हर जन आसान है, और फिर वो एक भी है कितना बड़ा, इतनी बड़ी कुदरत वाला, इसके खजाने नामहदूद, जिसके खजानों में कभी कमी नहीं आती, और जो अपने बंदों को देखकर खुश होता है, और बंदा जितनी मतलब आए इतनी मतलब खुश होता है, सब अंदर तो बच्चा एक मतलब देख लीजिए अपने फिर छोटा वाला तो चढ़ा दे और तीन छोटा के क्या तो क्या तक बचा रखता है, लाओ 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 खुश नहीं होंगे। अल्लाह तला जितनी मतलब जितनी मतलब खुश हुआ है, मेरा बंदा मेरे पास आया है, उससे मांग रहा है। हाँ, हुजूर ने अपनी उम्मत को दुआ वाला बनाया है, क्या बनाया है, दुआ वाला, और दुआ से ऐसे ऐसे मुश्किल मसले अल्लाह ने आसान किए हैं कि जो मुल्क माल वालों के मुल्क और ताकत से आसान नहीं हुए। हाँ, कुरान में अल्लाह ने इसको बयान किया कि मैंने अपनी कुदरत से मेरे बंदों की दुआओं पर इनके कैसे कैसे मसले हल किए, और मुझसे मांगो मैं तुम्हारे मसले करूंगा। इसलिए मेरे भाई मेरा जी जो तबली को दावत की मेहनत में हर मुशक्कत से ही बात कही जा रही है, मेरे भाई तो अल्लाह का दर छोड़कर जिसके हाथ में सब कुछ है उसको छोड़कर तो मारे मारे मिलेगा, पर तेरा कोई मसला हल नहीं हो, तू करोड़पति और अरबपति का बाप बन जा तब भी रास्ता एक ही है और वो अल्लाह की तरफ लौट कर आना है. उस अल्लाह को हमने माना है, वो हमारा अल्लाह है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. उस अल्लाह ने हमें ये ईमान दिया है और हमें ईमान इसलिए दिया है ताकि मेरे ईमान वाले बंदे मुझसे और मेरी कुदरत से नफा उठाएं और मेरे पास आए, किसी और के पास न जाए. तबलीग की मेहनत भी ये बात समझाई जा रही है कि भाई दोस्तों जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मेहनत दी है, हम उस मेहनत को अपना अपना काम बनाकर उस मेहनत पर अपनी जान और माल लगाएं और जान माल लगाकर नदी के तरीक और नहज पर फिर हम अल्लाह से लेने वाले बन जाएं. हाँ, अपनी मुश्किल से मुश्किल कहीं से आएगी और हर कहीं से करवाना चाहते हैं. अरे भाई बादशाह ने नाराज होकर जेल में बंद किया इसको. अभी भी दोस्तों और जेलर से कैसा दिखाता हूं, जेलर के हाथ में है कहां है, कुछ भी खुशामद करे जेलर की तो बादशाह की खुशामद करे और बादशाह से रहम की अपील करे और बादशाह से अपने गुनाह की माफी मांग करके छोड़ दीजिए. अब उसकी रहम की अपील वहां मंजूर होगी तो मैं समझ निकल हो इसको. अभी जितने हालात अपन चल रहे हैं, घरों नहीं आ रहा, सास ससुर के हालात, खास पास के हालात, कारोबार के हालात, बारिश इतनी हो गई कि खेती गई. अल्लाह बता रहा है कि हम शादी के जरिए भी सहर पर ही लाते हैं जुकाड़ और हम लीला भी जुकाड़ कर सकते हैं कि पानी इतना बरसा कि खेती करने का मौका ही नहीं मिला. सहर पर ही अरे कुदरत वाला है वो. मेरे भाइयों एक मेहनत है जिस मेहनत ने हमारी दुनिया और आखिरत बनेगी. हमारी दुनिया और आखिरत के बनने का ताल्लुक दुनिया बनने में नहीं है, हमारे अपने बनने में है. अगर हमने अपने आप को बना लिया तो हमारी दुनिया को दुनिया और आखिरत अल्लाह बना देगा. और ये अल्लाह ने अपने को बना दिया, दुनिया के पीछे नहीं पड़े हो, वो अपने को बनाने की मेहनत रह गए कि अल्लाह के बंदे को जिंदगी गुजारे. हम जनाब रसूलुल्लाह की वफादार और आपको उम्मती बनकर जिंदगी गुजारे, इसकी कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, यहां तक कि अल्लाह की बारगाह में ये वफादार करार दिए गए. वफादार मेरे बंदे हैं जो अल्लाह के वफादार करार दिए गए, मेरे दोस्त अल्लाह ने आसमानों से इनकी दुनिया और आखिर जिंदगी बनाने का फैसला कर दिया. खाजा निजामों ने वजह की मेरे दोस्तों दस्तर खान पर दिल्ली के हजारों आदमी खाते थे और उनके दस्तर खान पर बादशाह के शहजादे आके खाया करते थे. हुकूमत तो मुगलों के हाथों में थी और दस्तर खान क्या चलता था. एक मरतबा बादशाह ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन को सलामी के लिए बुलाया. भाई मेरे पास तो अपने ही है, दुनिया वालों के पास इन वजीरों के पास इन बादशाहों के पास बहुत से चापलोसी होते हैं ना, चापलोसी और नेक लोग अल्लाह के बंदों के साथ हसर भी होता है उनको. और बादशाह को उल्टी सीधी बात समझाई. ये लोग जल्दी ये जो माल वाले दुनिया वाले हैं तो पता नहीं इनकी असर कहां चल जाती है, वो एक कभी बात सुन के ऐसा कर देते हैं. हबीब की बात मान लेते हो, घर में रहने वाली उसकी बात क्या मान रही है. तो बादशाह
राजा साहब का लंगर चल रहा है, उसने अपने अमले में से जितने लोग वहां जाते सभा का बता रहा, राजा साहब के पास एक भी पैसा दिया, एक भी एनडीएस किया, रोक दिया। भाई साहब को पता चला कि बादशाह का ऑर्डर चला है कि कोई भी हमारे हमारे अमले में से और हमारे लोगों में से कोई भी खाजा के पास जाए नहीं, और जेवन खाजा सुन लिया। हाजी साहब ने अपने लंगर का जो मुंतजिम को बुलाया, रोजाना कितना पकता है, राजा इतना कल से डबल पकाओ खिलाओ। डबल पका खिलाने जरूरत भाषा माफी मांगने लगा, लंगर माफ कर दिया। राजा साहब को बनाया, बोलो क्या बनाया? अल्लाह का बंदा। किसका बंदा? बोलो अल्लाह का बंदा। नफ्स का बंदा जो होता है वो कभी नुकसान कर नहीं होता। नफ्स के बदले हमें तीन हजार दो बजे की नमाज में आए तो छोड़ दी। और तो की नमाज पढ़ता हूँ, अरे बजे की फजर की जब आप खुलती तब पढ़ता हूँ। अल्लाह मेरा तो गलत, जब आप खुले तब पढ़ने को नहीं कहा है। मैंने तो बजे की नमाज पर होता ही किया, शुरू कब होगा ना खत्म कब होगा, इसलिए इसके अंदर नमाज पर बजे की फजर की अजान कहवाई अल्लाह ने, तक तुझे बीच उठाने के लिए। और फजर की अजान ने अल्लाह ने दो लफ्ज और बढ़ा दी, अस्सलाम तो खैरु मिन नौम, ओ मुसलमान तेरी नींद से नमाज बेहतर है, छोड़ तेरी नींद। हमारा जी चाहे नजर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो हमको नफ्स के गुलाम हैं, नफ्स के बंदे हैं। बीवी के पैरों पर हाथ बुला के फजर की नमाज खत्म कर दी। आयशात का पुजारी है, अल्लाह का अपने बंदों से मुकाबला यह है कि अपनी मनचाही इच्छाई छोड़कर मैं जो चाहता हूं वो जिंदगी बुलाऊ, तुम मेरे बंदे बन जाओगे, और जब तुम मेरे बंदे बन जाओगे तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे मसाइल को अपने गुजर हल करूंगा। और ये अल्लाह जितने भी गुजरे हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है कि हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म पर गुजरे और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरे। हम अपनी नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं करेंगे। हाँ, हुजूर की एक सुन्नत को भी छोड़ने वाला वली नहीं बन सकता। हाँ, चलो बहुत पाक रहा है, अपनी किताब में लिखा है। हाँ, बहुत पाक की किताबें पढ़ो तो समझ में आएगी। हाँ, बहुत पाक बहुत पाक कहते रहते हो, कुछ पढ़ने तो नहीं। हजरत बहुत पाक के मवाइद हैं हुजूर रब्बानी, रब्बानी के नाम से हजरत ख्वाजा साहब के बयानात हैं। उन बयानात को पढ़ो, उन बयानात को सही माने पढ़ोगे तो फिर अपने बारे में मुसलमान भी होते हो, इस सब आपको फैसला करना पड़ेगा। हाँ, अजीब किताब है, पढ़ो, हो सकता है हिंदी में भी छुट्टी हो, गुजराती में सब छुट्टी हो। मतलब और बात फरमाते हैं कि जो आदमी एक सुन्नत के खिलाफ वर्जी करेगा वो वली नहीं बन सकता। अब गालियां देने वाले के वली बन सकते हैं? अब कलंक मानी गई है, तो हम लोग आनंद गुजरात में आनंद पढ़ते थे तो छुट्टियों में आनंद से रेल गाने में हम लोग गोधरा आते थे, तो गोधरा से एक दो स्टेशन पहले तो वहां एक जी के बैठा हुआ एक आदमी बापू जैसे बोल रहे बापू कहते उसको, तो वहां बैठा रहता था, तो गालियां देता रहे थे और नंबर नंबर बताता रहे थे और उसको वही मेहमान देते थे।
हाँ लेकिन जो वही हो सकता है जो अल्लाह के कायदे में अली सलाम की पूरी पूरी सेवा करे, हर मुसलमान नहीं बन सकता, कोई बात ना, मिला खास नहीं किसी के साथ, हर मुसलमान वली बन सकता है। क्या रास्ता कि अपनी जिंदगी को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग दे, वली बन जाएगा। और वली बनने के बाद अल्लाह का महबूब बने गए, क्या बने बोलो, अल्लाह का महबूब। और जब अल्लाह का महबूब बन जाएगा तो अल्लाह इसकी मोहब्बत को अपनी तमाम मखलूकात के दिल में डाल देगा, मोहब्बत डालेगा। कोई भी अल्लाह वाला मेरे दोस्तों ऑब्वियसली कोई तक आज के आज में अल्लाह वाला बन गाँव यहाँ हो है, कोई नहीं ऐसा, कोई ऐसा करे तो इसको माने, कोई ना माने। वली तो अपनी विलायत को छुपा कर रखते हैं, जाहिर तो बहुत सा जाहिर करता है, ये मेरा बंदा है, मेरा महबूब है, आप बंद करो। आता है कि जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह को महबूब होता है, अल्लाह ताला अर्श के उठाने वाले फरिश्तों से कहते हैं, ओ फरिश्तों अल्लाह बंदा मुझे महबूब है, तुम भी मोहब्बत करो। फिर आज के फरिश्ते आसमान के फरिश्तों से कहते हैं, फला अल्लाह को महबूब है, मोहब्बत करो उनसे। अब आसमान से जो फरिश्ते जमीनों पर जमीन पर आते हैं बंदों के आमाल वगैरह करने के लिए, हाँ किताब बबुल अभी कुमरा कुम बिंदई में कि तुम्हारे पास आसमान से फरिश्ते रात और दिन आते हैं, रात के फरिश्ते अलग होते हैं, दिन के फरिश्ते अलग होते हैं, ड्यूटी है दिन के फरिश्तों की, ड्यूटी फजर की नमाज से असर की नमाज है, और रात के फरिश्तों की ड्यूटी असर की नमाज से फजर की नमाज। ये दोनों फरिश्ते असर में और फजर में जमा होते हैं, बच्चे उन्नीस में और बंदों के आमालों पर लगे जाते हैं। ये जो फरिश्ते आते हैं जमीन पर, ये बंदों के दिलों में डालते हैं कि बंदे नए बन जाते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वस्सलाम के जमाने में आप नजम अपने साहबा के साथ बैठे हुए थे तो भेड़ियों का एक डेपोटेशन आया, किसका बोला, भेड़िया जानते हो, लोमड़ी जैसा एक जानवर होता है जो बकरी को खाता है, तो भेड़ियों का डेपोटेशन आया और आकर अल्लाह के कहने के साथ सलाम के सामने अपने पैर दिखाकर बैठ गए पांच अच्छे थे, और उसमें से एक बड़बड़ाना शुरू किया, बोलता है बड़बड़ाता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने साहबा से फरमाया, जानते हो ये कौन है, ये भेड़ियों की तरफ से रिपोर्टेशन आया है और अपनी एक बात लेकर आया है, और ये कह रहा है कि आप अपने साहबा के साथ हमारा कुछ मामला तय कर दीजिए कि कुछ बकरियां सालाना कोटे के तौर पर छोड़ देंगे, हम उसको खा लेंगे और इनकी बकरियों को सताएंगे, हमें इनकी बकरियों को सताने में शर्म आती है। भेड़िया कह रहा है, साहबा ने कहा हुजूर जिन बकरियों को हम पाले अपनी से और फिर उन बकरियों को भेड़ियों के हवाले करें, ये भी होगा, कैसे हो सकता, आप इनसे कह दीजिए हम अपनी बकरियों को रखवाली करते रहेंगे, ये मुकदम लोग खा लेते हैं, और उनका उनकी बकरियां तो भेड़िए भी खाते हुए शर्मा देते हैं, अल्लाह ने इनके भेड़ियों में दिन मोहब्बत डाली साहब। और आज ये काबिज मोहब्बत बीवी ने मेरी मोहब्बत पागल, नमाज पढ़ता नहीं, गुनाह छोड़ता नहीं, दूसरी औरतों को झांकना छोड़ता नहीं, और यहां क्या गाड़ी दे रहा है, शादी में रंडी नहीं होता, शादी में बुजुर्ग हत्या करता है, اللہ کو ناراض کرتا ہے, نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے, ابھی محبت چاہتا ہے, کہاں زندگی محبت. اللہ تو وعدہ کرتا ہے, قرآن میں خبر دے رہا ہے. ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. اللہ کے قدرت کی نشانیاں, ان نشانوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں تمہیں میں سے پیدا کی ہیں. کیوں؟ تاکہ تم اپنی بیویوں کے ذریعے سکون اور چہرہ دے دو. چین حاصل کرو. اور جہاد بھائی نہ کم مبت نہ کم ورحم. اور اللہ نے نکاح کی برکت سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے پر رحم کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا, یہ دونوں چیزیں اللہ نے ڈال دی ہے. علماء نے کہا ہے جوانی میں تو سکون حاصل ہوتا ہے, اور بڑھاپے میں دونوں میاں بیوی کی دل میں ایک دوسرے پر رحم کرنا اور ایک دوسرے سے محبت بڑھ جاتی ہے. پوچھے ہو گئے, دادا میاں نماز پڑھنے گئے, نماز دیر ہو گئی, تو دادی ماں کیا کہتی ہے؟ صاحب سے جب تیرے دادا آئے نہیں جاؤ, بڑی دیر کوئی کسی کروا ہو جاتی ہے. وہ اندر ایک رحم ہے. ہاں, اور بڑے میاں میں تو گھر میں بیٹھے ہیں اور بڑی جی بچی کے گھر گئی ہے, دے دو تو. اور بڑے میاں وہ اللہ کا شانو بڑھاپے کی زندگی میں میاں بیوی میں آپس میں محبت ڈال دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنا, اس کا خیال رکھنا, یہ تمام چیزوں میں دوستو اللہ ڈال دیتے ہیں. بڑھاپے میں اور بڑے میاں کی خدمت اس کی بڑی نہیں کرتی ہے, بڑی نہیں کرتا. آج کل کے بچے, اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب کو دوسری شادی کرنے دیتے نہیں, یہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں. حالانکہ آدمی کو تو کھانا دے گا, باقی اس کی اپنی ضرورت اور اپنی خدمت کون کرے گا اس کی؟ اچھا, ایک مطلب کیا ہوتا ہے, والد صاحب دوسری شادی میں مجھے بچے پیدا ہوں گے, تمہارا بڑوں بھی بچے رہے ہیں. اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا کہ دوسری شادی نہ کرنا چاہیے, ظلم ہے. آپ جب پوچھیے اور حدیث میں تو جس کی بیوی ان کے طرح کہتے اس کو مسکین کہا گیا, مسکین ہے. کیا ہے میرے بھائیو, یہ دعوت کی محنت ہے, اس محنت سے اپنے کو بنانا ہے. کس کو بنانا ہے؟ اللہ کا بندہ. اللہ کے بندے بنو, سب بدتیار ہو جائیں گے. اور کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے بھوکا رہنا, پیاسا رہنا, یہ وسا کو نہیں دے رہا. نہ بھوکے رہنے کا ہے, نہ پیاسے رہو, تو ساتھ ایک مطلب روزہ رکھنے کو کہا اس نے. کیا کہہ رہا ہے؟ تم کھاؤ بھی, پیو, کماؤ, آرام کرو, شادی کرو, مکان بناؤ, لیکن اپنی ضرورت کے لیے بناؤ اور اللہ کے حکم کے مطابق بناؤ اور اپنے پیارے نبی کے طریقے پر آنا, سب کرو, لیکن اپنی مرضی پر مت کرو, اللہ کی مرضی کے مطابق پیارے نبی کے طریقے. تو پھر تمہاری نکاح شادیاں بھی عبادت ہے, اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب دے گا, اور یہ تمہاری شادیاں تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بنیں گی. شادی سے آدمی کی فقر اور تنگی دور ہوتی ہے. اپنے دوسرا سمجھتے ہیں,
अंधी तेजी माथे पड़ा है कभी शादी कर दूसरी भी माथे पड़ेगी। कुरान में अल्लाह कहा है वास के बोल आया मामिन कुम और सालिहीन में नवादी कुम और इमाई कुम इन यकुम फराज कुम इन अल्लाह उन फ़ज़ली। तुम अपने देवाओं का और अपने खास अपने गुलामों बांदी और बांदियों का इनका निकाह कर दो, अगर ये बुखरा होंगे तो अल्लाह इन्हें गनी कर देगा। आज का मतलब सेट हो जाओ, फिर सेट होते तो सूट हो जाएगा। जब शादी का वक्त होता है तो मानते ही नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, फिर बड़े हो गए और उनके साथ ही कोई लड़की भी नहीं करेंगे क्या माँ बाप, माँ बाप को परेशान करेगा। अच्छा आपसे जवाब मैं देखो तू देख के क्या करेगा, अच्छा चौड़ी देखेगा तेरे माँ बाप तेरे लिए लड़की का इंतजाम करेंगे, तू तेरी माँ की गोद से बड़ा है, तेरी माँ तेरी एक एक आदत जानती है, तेरी मिजाज को जानती है, वो जब वो जानती है इसको कैसी लड़की चाहिए, वो तो तेरी माँ तेरे लिए जो लड़की पसंद करेगी वो तेरे लिए बेहतर होगी, इसलिए किसको तू पसंद करेगी। माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए जो चीज पसंद करेंगे, माँ बाप हमारे दुश्मन थोड़े हैं, माँ बाप से ज्यादा हमदर्द हमारा कोई नहीं है, क्या इसका हाल है, फिर बाप ने दुआ करना था दुआ करो और परेशान हूँ। जब कब्जे में निकलोगे ना और नबी वाली मेहनत करोगे, ईमान की मेहनत आमाल की मेहनत, और जब अंदर में दोस्तों अल्लाह अल्लाह के नबी का ताल्लुक मोहब्बत पैदा होगी तो फिर जिंदगी का रुख सही हो जाएगा, सोचना हर चीज, और फिर इंशाल्लाह जिंदगी का लुत्फ लुत्फ उठाओगे। औरत को माल पैसे कौड़ियां नहीं चाहिए, औरत को अपने खाविंद की मोहब्बत चाहिए, इसलिए कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, माँ बाप की मोहब्बत भाई बहनों की मोहब्बतों को उसने कुर्बान किया है, अभी दूसरे घर में आने के बाद वो मोहब्बत चाहती है। अगर तेरा बढ़ता हो और तेरी स्वरूप और तेरी जिंदगी और तेरे घर वालों की तरीके अगर मोहब्बत वाली है तो वो फाके पर बर्दाश्त, फाका भी खुशी से बर्दाश्त करेगी। कुर्बानी की आप देखिए जवानी हुई घर में, उसको घर में दिन गुजारते गुजारते घरों के बर्तनों से मोहब्बत पैदा हो गई है। अब एक कबूल की कहने के साथ सबको कुर्बान कर देना आसान थोड़ा है, इसी मेरे भाई मेरे दिल लो आप अल्लाह से हमारी गुजारिश है, इस मेहनत को अल्लाह ने हमारे लिए रहमत बनाकर जिंदा फरमाया है, हमें कुछ भी ना आए फिर के अल्लाह के रास्ते निकलोगे तो जिन लोगों को जमात होगी, जमात का 10 आदमी है और 15 आदमी है, इनका कुछ कुछ को मेरे दोस्तों बहुत नमाज आती होगी कुछ को नहीं आती होगी, तो निकलने के जमाने अपनी नमाज हम सीख सकते हैं, बड़ों का मदरसा है, अल्लाह की नदी वाली मेहनत करते करते खुदा हमें अपनी नदी वाली जिंदगी का फरमा दी है, नदी वाली जिंदगी आप लाखों की जो जिंदगी बड़ी प्यारी जिंदगी है, आदमी को लुत्फ आ गया और फिर जब वो जिंदगी हमारे अंदर आएगी तो इस जिंदगी की अपनी तमाम बरकतें रहमतें लेकर आएगी, रहमतें बरकतें मोहब्बतें, हमारा घर जन्नत का नमूना बनेगा। अब मैं आपसे कहूं घर में हर एक दूसरे से हमदर्दी करने वाला हो तो कितना सुकून होता है, हर एक अपना करने वाला हो तो परेशानी परेशानी, एक मेहनत है जिस मेहनत से अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बनाना चाहता है और इस उम्मत की खोई हुई इज्जत को फिर दोबारा देना चाहता है, इस उम्मत ने आपकी इज्जत को खोया है, کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر اور دنیا کے اندھے اور نادان انسانوں کی دنیا پر راز کرتا کر اپنی زندگی کا خدا بدلا، جس کی بنیاد پر میرے بھائیوں اس کی عزت چھینی ہے. عزت کمانے تو اللہ ہے. جب ان کی زندگی میں دین تھا، اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا تھا، صحابہ کے قدموں میں آئی اور یہ اللہ کے قدموں میں دنیا آئی، اور حکومت کے نشے میں انہوں نے جب اللہ کے دین کو بدل کچھ ڈالا تو اللہ نے حکومت کو بھی ان کے ہاتھوں سے چھین کر دوسرے والے کرتے رہے ہیں. اللہ نے حکومت اس لیے دی تھی تاکہ مسلمان اللہ کا دین دنیا میں زندہ کرے. اللہ دین مکنہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو زمین کا وارث بناتے ہیں اور بادشاہوں کر دیتے ہیں، تو اس لیے دیتے تاکہ اللہ کی نماز کو قائم کرے. ہوتا کیا کام کو دنیا میں زندہ کرے؟ یہ تو پولیس والا بننے کے بعد کما چھوڑ دیتا. تو کہتے ہیں ہمارے باپ کی رہے تیرا کیا حق تیرا ہے، مجھے کیا ملے گا تجھے؟ تو اللہ نے دنیا میں سچائی امانت داری کو زندہ کرنے اور خیرا بھی دیکھنے جانا. رشوت نے سنا تجھے پولیس بننے کے لیے کہا تھا، رشوت نے دیتا ہے پولیس بننا تو آج جانے دے نہیں. کوئی 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 اصل میں ہمارا آنے والی بات ہے. نیتا گیری کرنے لگا. اب نیتا گیری میں تو خدا کی مخلوق کے کام آتا تو اپنا جیب بھرنے کی جگہ پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ کیسے کان پکڑ کے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا و قلم دے رہے ہیں؟ ہاں چاہے نبی تعلق کی غلامی اختیار کر لے، پھر دنیا بھی تیری اور آخر دن خدا ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے گا. اس زندگی کو اپنے اندر لانے، اپنے گھر میں لانے، اپنی اولاد کی زندگی میں لانے کی محنت کو سیکھنے کو کہا جا رہا ہے. اس محنت کو سیکھا جائے اور اس محنت کو زندگی میں داخل کیا جائے. جب یہ محنت زندگی میں داخل ہو جائے گی تو اس محنت کے داخل ہونے کے بعد ہماری زندگی میں، ہمارے بال بچوں کی زندگی میں اللہ کا دین آئے گا. نبی کے طریقے، رحمت والے طریقے آئیں گے، اور نبی کے رحم والے طریقے آئیں گے تو ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے. اس لیے آپ آزاد سے گزارش ہے، اب کل کنواں میں کوئی نیا کام نہیں ہے تو ہمارا اشفاق اللہ اس کی مغفرت فرما دے. زندگی کا پاک اللہ کو پیارا ہو گیا اور زندگی پر محنت کرتا ہی رہا، اپنا روبات دارا کرنے پر محنت کرتا ہی رہا، الٹی سیدھی سنتا ہی رہا. ہمارے کلکوا میں گجرات سے جماعتیں آتی رہی، جتنی بھائی فتح کریم، بھائی یوسف وغیرہ، اتنے لوگ اپنی جماعتیں لے کر آتے رہے جاتے رہے. اب میرے بھائیوں محنت میں لگو، محنت میں لگو موت سے پہلے پہلے. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے انسان کو موت سے پہلے پہلے زیادہ موقع دیا ہے، اس موقع میں جو کچھ کرنا ہے کر لیا، جب یہ ہاتھ سے موقع نکل جائے گا پھر موقع نہیں ملے گا. ایک موقع ہے اپنے کو بنانے کا، ایک موقع ہے دین اور ایمان کی زندگی میں سیکھنے اور زندگی میں لانے کا، ایک موقع ہے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت والی زندگی کو گھر میں بسانے کا، ایک موقع ہے کہ میرے دوستو اللہ کا دین دنیا میں زندہ کرنے کا موقع ہے. یہ اپنی محنت کے ذریعے اگر ہم نے اس کو کر لیا تو پھر میرے دوستو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا. ہاں برکل موت، موت کے وقت میں جنت دکھائیں گے، دیکھو یہ جنت ہے وہاں چلنا ہے، شہادت سنائیں گے. اور یہ میرے دوست خوشی خوشی جائے گا اللہ کی ملاقات کے لیے، یا اللہ سے دوست محبت کی ہے
और मोहब्बत से की जा रहा है, और हमारी सही मेहनत के नतीजे में हमारी साथ साथ पुष्टों की जिंदगी गुजर बना देगा। मान लेके जाओगे तो जिंदगी आएंगी, लड़ाई आएंगी, दीन देकर जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ पुष्टों की जिंदगी गुजर बना देगा। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप अपना कुर्बानियां दी, हुजूर ने कुर्बानी दी, और कुर्बानी देकर बताया कि अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करने और अल्लाह का दीन जिंदगी में लाने के लिए पेट पर पत्थर बांधने की नौबत आई तो पेट पर पत्थर बांधे। हाँ, अपने नन्हे बच्चों को दूध छाती से खुश हो गया तो अपने नन्हे नन्हे बच्चों को अपनी जबान मुंह में देकर दिलासा दिया है। दीन के हाथ दीन तो कुर्बानी से आता है जिंदगी में, चार पैसे चार पौड़ियां चार ठीकों को हासिल करने के लिए कदर जाना पड़ता है। छोटे नहीं छोड़ते बच्चों को, तीन को बच्चों को चार चार हजार छोड़ के जाते हैं, चार पौड़ियां ठीक है मिली थी। अल्लाह का मुबारक दीन, इस मुबारक दीन के बारे में अल्लाह ने कहा हम इस दीन के बारे में हम राजी हैं, हमने राजी होकर और पसंद करके तुम्हें दीन दिया है, इस दीन की कदर कर लो। ये दिन मेहनत से आता है हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में। बच्चों को तो स्कूल में भेजो ना नहीं कह रहे, लेकिन स्कूल में भेजने के बाद इनकी जिंदगी में दीन लाने की मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। स्कूल में एजुकेशन भी जाएगा लेकिन दीन तो दीन की मेहनत से आएगा। आप अपने घर में भी दीन की मेहनत को जिंदा करना पड़ेगा, तालीम कहते जिंदा करने पड़ेगी, नमाजों का एहतमाम आपको अपनी दाद से जिंदा करते हुए इन बच्चों को एहतमाम करवाना पड़ेगा। हाँ, बच्चों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बतानी पड़ेंगी, अपने बच्चों को जहन बनाना पड़ेगा, बेटा तू वकील बन, तू जो भी बंदा बन, बाकी असल तो अल्लाह का बंदा है, नबी का उम्मती है, इन्हें जिम्मेदारी तो ये है, इसे तो ज्यादा करना है। बचपने से आपको जहन बनाना पड़ेगा, बीवी की जिंदगी में दीन बातों से नहीं आएगा, फिक्रों से आएगा। हाँ, सच कहता हूं, आप अपने दिल को पूछिए कि तेरे निकाह शादी होने को कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 20 और 40 साल के जमाने में तूने अपनी बीवी से दीन की और ईमान की बात कितनी देर की, अल्लाह की बंदी को मुसलमान होने के एतबार से क्या जिम्मेदारी है वो कितना आपका समझा जाए, उसके दीन की क्या फिक्र क्या है, कैसे दी रहा है। इसके लिए कह रहे मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ, छुट्टी है नहीं, फुर्सत नहीं मिलेगी, मौत का फुर्सत नहीं है, रिश्तों को फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन अल्लाह ने उनको खलीफा नहीं बनाया, खलीफा तो उस इंसान को बनाया है कि अपनी दुनिया के तमाम झमेलों में रहकर ये अल्लाह की बात को मानकर अपनी जिंदगी के रुख को शहीद करते हुए अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देकर दुनिया से जाए। इस पर साहब नवाज देगा, आपसे हमारी गुजारिश है कि नवंबर दिसंबर में जमाते जा रही है, अक्टूबर तो चल ही रहा है, आप बच्चे बहुत से भाई हमारे हैं जिन्होंने चाबे भी लगाए होंगे, चिल्ला भी लगाया होगा, तीन दिन भी जाके होंगे, पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं करते, जब पाबंदी से कोई चीज नहीं होती तो उसका नतीजा नहीं आता। आप दुकान खोले हफ्ते में तीन दिन खोले दो दिन तक खोले तो उस दुकान जमती नहीं, जमेगी नहीं, नतीजा नहीं आएगा। और दीन के बारे में तो अल्लाह कुरान में इस्तिकामत का मुतालबा कर रहा है कि हर काम को पाबंदी से करो, दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज की अल्लाह ने, ताकि मुसलमान 5 वक्त की नमाज एहतमाम से अदा करे और इस्तिकामत से नमाज पढ़े, ताकि इस नमाज के जरिए से अल्लाह का ताल्लुक मिले। नमाज मामूली चीज नहीं है, लेकिन पाबंदी होनी चाहिए और सही नमाज पढ़नी चाहिए आपको, कुरान की तिलावत की पाबंदी होनी चाहिए, अल्लाह की याद पाबंदी से होनी चाहिए। इसके अलमांडिया सर रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिकामत और पाबंदी हमें आए इसके लिए आसान तरतीब बताई, इतना करो,
इतना करोगे तो आगे की तौफीक अल्लाह और दे देगा। ईमान हर सेकंड फर्ज है, ईमान हर सेकंड फर्ज है। जब ईमान हर सेकंड फर्ज है तो ईमान की हिफाजत की फिक्र करना हर सेकंड जरूरी है। जिस सेकंड में मौत आई उस सेकंड में कलमा नहीं पड़ा क्या होगा? क्या हुजूर पाक ने साहब सलाम ने सहाबा को बाकायदा तरबीत फरमाई, जब जी तू ईमान को ईमान को ताजा किया करो। सहाबा ने कहा हुजूर ईमान को कैसे ताजा ताजा करें, कई फरमाते थे तू ईमान रहे आप सुन। अल्लाह के फरमाया अखिर हो गया खौफ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ो और कसरत से कहो, इसके जरिए तुम्हारे ईमान में पुख्तगी आएगी और तुम्हारे ईमान में ताजगी आएगी। बहुत तेजी की है। इसलिए भाइयों आप बता दे हमारे गुजारिश, बहुत से हमारे भाई हैं इनका चिंता लगे हुए कई साल हो गए। ऐसा कमाल की बात यह है कि एक मरतबा चिंता लगाने के बाद आज अपने आप को तबियत ही कह सकते हैं। तो कम से कम वक्त ही तेरा लगता है, साल का चिंता दसवां हिस्सा है, महीने के तीन दिन दसवां हिस्सा है, रोजाना के ढाई घंटे दसवां हिस्सा है, इतना भी तू लगा रहे नहीं तो फिर तेरा ईमान काल क्या होगा? अभी तो अपने आप को कमरे भी कैसे कहता है कमरे में लगाओ। हफ्ते में एक मतलब भी दुकान खोल में कारोबार करता हूँ तो कहेगा दुकान तो खुलता नहीं है। ऐसा हमारा हाल है 1955 में 1970 में टीका लगा था तभी मैं अल्लाह का बदल बदल लगा हुआ हूँ। अरे मेरे भाई वो तुझे 70 में अल्लाह 24 इसलिए देगी ताकि मौत तक तू दीन की मेहनत लगा रहे, ताकि तेरे ईमान में तरक्की हो, अल्लाह का ताल्लुक मिले और अल्लाह अल्लाह में तू महबूब बनता बनता चला जाए मेहनत करके, और तू हजारों इंसानों की सही जिंदगी पर आने का जरिया बन जाएगा। आपका बहुत से साथी वक्त लगाए हुए होंगे, उन्होंने किसी इलाके में वक्त लगाया होगा और वक्त लगाने के जमाने में वहां जाकर मेहनत करके आए होंगे और उनकी मेहनत पर कितने लोग तबलीग में लगे होंगे, वो अक्सर लगे हुए होंगे। अशोक भैया के जरिए कितने लाभ होगा हम लोग, अशोक भैया कहते थे अशोक भैया भाई का मोहब्बत करा जो भैया है आज वो तो खबर में जाके सो गए हैं, लेकिन इनकी मेहनतों पर जिसको को अल्लाह ने तौफीक दी थी इनकी मेहनत लगने की नमाजों की तौफीक दी अल्लाह की नबी की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दी, वो तमाम आमान का बदला खबर में इनके नाम आमान में लिखा जा रहा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे मेहनत कर इस्माइल मौत अल्लाह ने अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो जिंदगी में देख लेंगे अल्लाह हमारी मेहनतों पर जिनको हिदायत देगा, अगर मुकदर में नहीं है तो खबरों में जब जाएंगे ना तो अल्लाह का खबर में खबर देगा आज अल्लाह ने फरा कभी को हिदायत दे दी आज फराम की हिदायत तुम फरा गया अल्लाह तला हमें अपने खबरों में खबर देगा। तो कर लो ये तबलीग की मेहनत जो है दो धारी है, इसकी मेहनत का पहला फायदा तो आपको होगा, आप में बहुत से होंगे तबलीग में लेकर देखकर नमाज नहीं पढ़ते होंगे सबसे पहले हमारा फायदा है। आज ये दुकान खोलता है ना तो दुकान खोलने के बाद सबसे पहले इसके घर का चूल्हा जलता है और फिर मोहल्ले वालों के चूल्हे जलते हैं, उसकी दुकान पर से सौदा लेने के लोग अपने चले जाते हैं। इनकी मेहनत ऐसा तिजारत की तरह है, हम चीजा लगाएंगे और सही तरीके में लगाएंगे तो उससे फिर हमारे ईमान में हमारे अखलाक में हमारी फिक्रों में खुदा तरक्की देगा। और सही करने का, और जहां जहां जाके मेहनत करोगे वहां अल्लाह करो उस मेहनत को जिंदा करेगा। हमें तो पता भी नहीं होगा कि हमारे हम दर्ज करने गए थे और हम भूल गए, लेकिन वो कहता होगा आप हमारे घर आए थे और आपने हमारी मुलाकात की थी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो जल्दी बना, तो आपको याद दिलाएगा। हाँ, अब तुम्हारी मेहनत पर जितने लोग सही जिंदगी पर आए होंगे कयामत के दिन, जिस जो जरिया बना होगा जुदू की हिदायत का, ये सब उसके झंडे के लिए चलूंगे, सबको लेकर चल रहा हूं। और मैशर वाले कहेंगे कौन सा फरिश्त, कौन सा ये नबी है, क्या नबी नहीं है, हजरत मोहम्मद आसम को मूर्ति है, दुनिया में नबी वाली मेहनत करके आया है और उसकी मेहनत कर दीजिए मैंने हजारों इंसानों को खुदा ने हिदायत दी है, आज इन सबको लेके जा रहा है। हाँ, की बात में कुछ, और तुम्हारी मुकद्दर की रोजी में अल्लाह कमी नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह आपके शोकर और बढ़कर देगा। देखो मुकद्दर की रोजी तो लिखी जा चुकी है, हम बाकी रहने दें, हाँ अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, हाँ चार महीने हमल पर गुजरने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों पे भेज कर कह दिया कि इसमें क्या हो जाओ, इसी दुनिया में कितना रहना है, इसकी कितनी रोजी है, कितनी तकलीफ है, कितनी राहत के दिन है, इधर भी क्या हो, मुकद्दर की रोजी तो अल्लाह देगा, चाहे अल्लाह का नाम ब्रह्मांड की राय कुछ भी कहे। आज दुनिया में पौने 700 करोड़ इंसान है, उनमें से पौने 200 करोड़ है 200 मुसलमान है, बाकी 600 करोड़ तो अल्लाह की नाफरमान है, लेकिन अल्लाह तो वो खाना दे रहा है, उनकी मुकद्दर नहीं दे रहा है, नाराज होता है, तो वो अपना मुकद्दर कीजिएगा। लेकिन अगर नबी वाली मेहनत की जिम्मेदारी को उठाते हुए अल्लाह के रास्ते में निकलते हुए अपनी मेहनत को मेहनत करोगे तो अल्लाह मुकद्दर की रोजी खुश होकर देगा और अल्लाह तआला शानों बरकत के साथ देगा और अल्लाह तआला शानों को रहमत बनाकर देगा। और मैं अगर अपनी अदालत जिंदगी गुजार कर भी आदमी दुनिया में रहेगा तो अल्लाह इसकी मुकद्दर की रोजी तो तब भी देगा, नाराज होकर देगा, बगैर प्रकट के देगा। आप देखो इतने दुनिया में दुनिया के पुजारी या दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों, करोड़पति बनने के बाद इनका पेट भरता नहीं है, बरकत नहीं है, कसरत है, इनके बच्चे हम भी होते हैं। हाँ, गरीब आदमी मजदूरी करने वाला आदमी नमाजी दीदार आदमी मेरे दोस्तों, इसको अगर 200-500 रुपए दिन में इसके बाद अल्लाह का शुक्र बहुत मिल गया, फिर आगे सोचता नहीं हो जाता है अल्लाह वाले, और इसके घर में पड़ेगा तो फिर पीछे नहीं है, अल्लाह की तरफ नाराज होके मिल रही है दुनिया, नाराज होके देगा बगैर दर्शन के देगा, और दुनिया आदाब बना कर देगा। अल्लाह के नबी की दुआ में अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मा यकून अलैहि अज़ाबन, अल्लाह मैं तुझसे ऐसे माल से पनाह मांगता हूं जो माल मेरे लिए अज़ाब बने। देखिए दुनिया तो मुकद्दर की आएगी, लेकिन अल्लाह नाराज होकर देगा कि मैंने तुझे पैदा किया मेरी इसाब के लिए, मेरे जीत के लिए, अब तू अपनी जिम्मेदारी भूल कर दुनिया के अंधों की तरह पूरी दुनिया के पीछे पड़ा कर दे, तेरी मुकद्दर है। अच्छा, फिर दुनिया अल्लाह को नाराज करके दुनिया लेने वालों को चैन से खाना भी नसीब नहीं है, चैन से खाना नसीब नहीं है, वो पहले से दुनिया कम थी तो 5 रोटी खा जाता, तो डेढ़ रोटी भी नहीं खाई जाती, हम देखते कितना खाते, इसमें भाइयों अल्लाह से कहता अल्लाह के लिए अब तक जो हमारी कोताही हुई माफी, अल्लाह से माफी मांगो, वो कर लो और आज की फिर मस्जिद से तय करो कि जो कम से कम तकती वर्जन मांगी अल्लाह ने बताई है कि हम रोजाना अपनी मस्जिद में बैठकर अपने मोहल्ले के लिए और पूरे आलम के लिए सोचें, फिक्र करें, और रोजाना ढाई घंटे अपने औकात में से फारिग करके हम अपने मोहल्ले के एक मुसलमान पर मेहनत की तरतीब बनाए और पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन के तकाजे पूरा करने की फिक्रें करें। और मेरे भाइयों, अपने अपने महीने के 3 दिन की मेहनत तरतीब बनाओ, 27 दिन कमाओ, 1000 साल मुक्ति कमाओ, और 3 दिन अपनी जमात के बना बनाकर अल्लाह के नाम निकलो, अपनी अपनी ईमान की बैटरी को चार्जिंग करने के लिए और अपने अंदर अपनी फिक्रों को सही करने के लिए। दुनिया में रहते रहते 27 दिन जो हमें गफलत आई उसे खत्म करने के लिए, और अहम उम्मत मुस्लिमा में अल्लाह के नबी वाली मेहनत जिंदा हो, इसके लिए 3 दिन अपनी मेहनतों से निकालो, अपने देहात में जाके मेहनतों से 3 दिन मेहनत करो। महीने में, साल में 4 महीने लगाओ, बहुत अच्छा। अल्लाह तला 4 महीने लगाओगे तो 8 महीने 12 महीने गुजर देते, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन खैर, हिम्मत नहीं पड़ती तो कम से कम 10वां हिस्सा 1 सिक्का साल में अपनी फिक्र से अपनी जरूरत समझ के लगाओ, और अपने मोहल्ले के भाइयों को तैयार करो अपने साथ, अपने साथ लेके लो। आपकी मेहनत पर जितने भी तैयार होंगे और आपकी आपकी मेहनत पर जितने लोग मेहनत में लगेंगे, इंशाल्लाह इनकी मेहनतों में आपका पूरा हिस्सा हो जाएगा। अपने घरों में दीन आने लाने के लिए रोजाना घर वालों को आधा घंटा दो, और आधा घंटा बीवी बच्चों को लेकर बैठो और शेर की भलाई की जो किताबें हैं ये पढ़कर ध्यान तो सुनाओ इंशाल्लाह। अगर ये सारी घरों में एहतमाम से करते रहोगे, अल्लाह इसकी बरकत से उन सुराखों को बंद कर देगा जिन सुराखों से तुम्हारे घरों में अल्लाह की नाफरमानियां और गुनाहें गुनाहों की जिंदगी आ रही है, अल्लाह उन सुराखों को बंद कर देगा। और इस फजाइल की किताब के जरिए मतलब बच्चों में नमाज तिलावत नबी की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने के जज्बात और हौसले पैदा होंगे, और अपने मोहल्ले के कष्टों में जोड़ो। हफ्ते में एक दिन मोहल्ले में जमकर कष्ट करो और अपने मोहल्ले के एक एक घर पर जाकर अपने एक एक मुसलमान के गुजारत करके मस्जिद में लाओ, और मस्जिद में लाने के बाद सब मिलकर कर सोचो कि अल्लाह का ये दीन हमारे घरों में हमारी बस्ती में और पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए। इसके लिए एक तकाजे हैं, उन तकाजों को पूरा करना है। हर पर जो उम्र से अपना महीने में 3 दिन लगे, 7 साल का पिल्ला लगे, महीने में तो जिंदगी में एक मतलब 4 महीने लग जाए, इसकी तरतीब बनाकर फिक्र करो, संजो के बैठोगे इंशाल्लाह, जब सब सब जब संजो के बैठेंगे अल्लाह रहने का। और आपकी इस मेहनत के नतीजे में आप खुद घरों में अंदर परेशान हो एक सुकून की जिंदगी देगा। गुजारिश है आज से तय करो कि इंशाल्लाह महीने के 3 दिन, हफ्ते के 2 घंटे, रोजाना की मेहनत, साल का कम से कम चिल्ला, और अपने घरों में अपनी तालीम और अपने बच्चों की मेहनत की फिक्र इंशाल्लाह आज से अपनी जिंदगी के जिसम में दाखिल करके जिंदगी गुजारेंगे। करोगे? अरे अक्कल दुआ वाले करोगे? हाँ, अक्लमंद तो वही है, अल्लाह के नबी यही बात फरमाई, अलका ये समझदार नफ्स करो अकल मत तो वही है, अक्ल वाला तो वही है कि जो अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत का पाबंद बनाए और मौत के बाद काम आने वाले अमल करे। अल्लाह हमें अकलमंद बना दे और हमें अल्लाह अक्ल दे। हाँ, अल्लाह से अकल मांगो, अकल सबके साथ तय करो इंशाल्लाह, एक मरतबा 4 महीने जरूर लगाएंगे। अगर लगाओगे अपने लिए, किसी और के लिए, अपने लिए, अल्लाह के लिए, अपनी जिंदगी बनाने अल्लाह को खुश करने के लिए, एक मरतबा 4 महीने इसलिए लगाओ कि सहाबा की मुशाबत हो जाए। किताबों की रोशनी में हमारे दिल फरमाते हैं कि सहाबा की साल में 4 महीने अल्लाह के रास्ते की नफर हरकत में लगते थे। साल में 4 महीने, अगर साल में 4 महीने लगावे, एक मरतबा तो लगा दो, 4 महीने लगाओ इंशाल्लाह, अल्लाह तआला आपकी रोजी में बरकत देंगे और आपके लिए मसाइल को हाथ पर दूर कर देंगे। इसी में दोस्तों सबके साथ बैठे रहो, हम आप पर जरूरत नहीं करेंगे, एक बात आपको समझाई
समझाने की कोशिश की हमने, अल्लाह हमें भी समझा दे, आपको भी समझा दे, और मैं कहूँ अल्लाह के अजाब पर नजर करना। देखो शैतान जब भी तुम सोचोगे तो तुम्हारे हालात दिखाएगा, ये काम है, ये काम है, ये बताए करते हम क्या कह रहे हैं, शैतान आपको इस चक्कर में डाले, इससे पहले अपनी निगाह अल्लाह पे करो, मेरा अल्लाह है आसान कर देगा, मैं क्या करूंगा उससे दुआ मांगूंगा वो आसान कर देगा, तो फिर शैतान अपना चक्कर ही चलाएगा। इतने भाई हो आप आजाद मुल्की हैं, माशाल्लाह समझदार हो और समझते हो, वर्षों के दिनों में एक बात आई होगी कि इंशाल्लाह आपको वोट लगाना है, निजाम करनी है और अपने अपने कार्य को पूरा करना है। इसी भाई दोस्तों खड़े खोल खड़े होकर जिनके दिन बल्ला ने बांट डाली है वो खड़े होकर अपने आप को पेश करें, इंशाल्लाह चार महीने, इंशाल्लाह मैं नवंबर दिसंबर तक में अपने चार महीने लगाऊंगा और अल्लाह के राम निकलूंगा और मौत तक अपनी दीन की मेहनत की जिम्मेदारी उठाऊंगा। अब खड़े होकर बोलो और अपने आप को पेश करो।